Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Grivara Dhari Jaya Jaya Gopi Jana Ballabha Grivara Dhari Jaya Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सुत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री न प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की विदाई गौर प्रेमानंदे गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सद्गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद भागवत में सत्यम में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। बल्लम पूर्णिमा का आदिवास पूर्व प्रातः काल है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के अंतर्गत सभ्य मानव समाज के जो लक्षण है, गुण है, उनका श्रवण वर्णन कर रहे हैं। सातवें स्कंद श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय में 5वें और 6ठे श्लोक का आज हम श्रवण वर्णन करेंगे। यहां सभ्य मानव को अपनी परंपराएं और धर्म की मर्यादाओं को नियम से निभाना चाहिए। ये शिक्षा दी जा रही है। आगे चल के तो ये शिक्षा दी जाएगी कि ये सब मर्यादा तब तक आवश्यक हैं जब तक भगवान की प्रेम भक्ति के स्तर पे कोई नहीं पहुंचा है। और भगवान की भक्ति के उपरांत भी जो इस श्लोक में 5वें और 6ठे में वर्णन है वो तो सबके लिए अति आवश्यक है। तो आइए 5वें श्लोक का पाठ करते हैं। देशे काले च संप्राप्ते मुन्य अनम हरि देवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यसम कामधुग अक्षम। देश काले च संप्राप्ते मुन्यानम हरि देवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यसम कामधुग अक्षम। देश काले च संप्राप्ते मुन्य अनम हरि देवतम न्यसम काम दुकक्षम। देशे मुन्यानम हरि देवतम शरणाया विधिवत पात्रे नसम का। देशे काले च संप्राप्ते देशे काले च संप्राप्ते श्रद्धया विधिवत पात्रे परमं काम मातरि
कहा
देशे काले च संप्राप्ते न्यासं कामधुकाक्षं देशे काले हो गया। वैसे देशे का अर्थ है किसी पवित्र स्थान, जैसे जमुना जी का तट है, वृंदावन धाम है, प्रयागराज है, गंगा का तट है, ये देश हो गया। और काल का अर्थ है समय, जैसे द्वादशी का समय है, पूर्णमासी का समय है, जन्माष्टमी का समय है, तो पुण्य तिथि पे, पुण्य स्थान पे संप्राप्ति का मतलब जब आपको अच्छी तरह से वो मौका मिल जाए, ऐसी जगह और ऐसा समय उपस्थित हो जाए तो क्या करना चाहिए। मुनि अनम, मुनि अनम का अर्थ है वो भोजन जो साधु खाते हैं, मुनि खाते हैं। मुनि अनम जिसमें कोई दोष नहीं होता है, जिस अन्न में कोई दोष नहीं होता है। असल में मुनि अनम, वैदिक काल में मुनि अनम का अर्थ ये है वो अन्न जो खेत में किसान छोड़ के चला जाए उठाने के बाद, या कहीं जहां अनाज बिकता है गिरा पड़ा है उसको कथा कर लिया जाए, जिसमें कोई दोष नहीं है उसको मुनि अनम कहते हैं। और मुनि अनम उसको भी कहते हैं जो फल फूल भगवान की तरह से जो तरफ से पका हुआ सामान है वो मुनि अनम है। और क्या करे मुनि अनम को, हरि देवतम श्रद्धया विधिवत, विधिवत नेम से हरि को जो सब देवताओं के अधिपति है उसको अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। फिर क्या करे, पात्रे नियसम, जो सत पात्र वैष्णव ब्राह्मण है उसको अर्पण करे, उसको वो प्रसाद खिलाए। बोला फायदा क्या होगा। काम धुक अक्षम, वो काम धेनु अनंत काल तक अक्षय आपको फल देगा। ये काम धुक शब्द और कहीं भगवत गीता में आया है, किसी को याद है? सोच के बताओ। दूसरे अध्याय में इतना मैं बता देता हूं, नहीं दूसरे में नहीं, तीसरे में होगा, तीसरे में। स यज्ञः सृष्ट्वा प्रजापतिः, निकालो ये श्लोक, मेरे कहना तीन का नौ होगा या दस। स यज्ञः है, क्या लिखा, स यज्ञः सृष्ट्वा प्रजापति प्रोचवाच प्रजापतिः से अनेन विषद्वम, फिर इष्ट काम दुख है, लिखा है क्या, इष्ट काम दुख। इष्ट काम दुख का मतलब जैसे काम जिनों से जो मांगोगे वो मिलेगा, वो अगर कोई ऐसे उचित समय पे उचित जगह पे धर्म स्थान पे और बहुत ही पवित्र तिथि पे, ऋषि अनम का मतलब शुद्ध, प्रभुपाद जी ने लिखा है घी में पका हुआ, शुद्ध गाय के घी में पका हुआ अन्न, भगवान को भोग लगाकर सत पात्र वैष्णव को खिलाए तो अक्षय सुख संपत्ति धन धान्य और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। वहां लिखा है यज्ञ करेगा तो होगा, और ये यज्ञ है। बोला भाई ब्राह्मण को खिला दिया, वैष्णव को खिला दिया, अब क्या करें? तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं, अब क्या करना है। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अनम संविभजन पश्येत सर्वं तत पुरुषात्मकम्। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अनम संविभजन पश्ये सर्वं तद पुरुषात्मकम्। अब भगवान को भोग लग गया, वैष्णव को देना है, खिलाना है, और किसको दे? देवऋषि, देवऋषि पितृ भूतेभ्यो। प्रभुपाद जी लिखते हैं देव का मतलब देवताओं को, ऋषि का मतलब साधु संतों को, पितृ का मतलब अपने पूर्वज पितरों को, और फिर है भूतेभ्यो, फिर दूसरे सामान्य मानव को, और फिर लिखा है स्वजनम अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदार कौन से नंबर पे आए हैं? हाँ, अंतिम। और हम किसी को खिलाना होता है तो पहले किसको खिलाते हैं? रिश्तेदार को। तो मर्यादा क्या है? भगवान को, वैष्णव को, देवता को, ऋषि को, पितृ को, सामान्य जनता को, और फिर अपने रिश्तेदारों को। वो भोग प्रसाद बांटे, विभजन, विभजन का अर्थ है सम विभजन, सबको विभाजन करके बांटे। क्या सोचते हुए? ये मेरा रिश्तेदार है इसको खिला रहा हूं, ये ऋषि आशीर्वाद देगा इसलिए खिला रहा हूं, ये देवता कुछ हमारा मन की कामना पूरी करेगी इसलिए खिला रहा हूं। नहीं, पश्येत का मतलब उस वक्त देखे और विचार करे कि ये सब जो खा रहे हैं ये कौन है? सर्वम, ये सब तत्पुरुषात्मकम्, ये सब उस भगवान के अंश हैं, ये सब भगवान के अंश हैं, ये जो खा रहे हैं ये सब भगवान के अंश हैं। ऐसा करके सभ्य व्यक्ति सबको भोजन कराए। आज के श्लोक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले पांचवें श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूं। जब उपयुक्त शुभ अवसर तथा स्थान प्राप्त हो, ये यदि को छोड़ो, आप समझो कि आपको जो यहां आज बैठे हो, शुभ स्थान वृंदावन प्राप्त हुआ है और शुभ दिन कल बलराम पूर्णिमा है, ये सब आप ऐसे समझ लो, आपको ये प्राप्त हो गया है, तब क्या करे? तो मनुष्य को, अगर आप मनुष्य हो तो, नहीं मनुष्य हो तो, मनुष्य वो देवता हो तो नहीं, मनुष्य को चाहिए के अत्यंत प्रेम पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्च विग्रह को घी में बना भोजन अर्पित करें, और फिर उपयुक्त व्यक्ति अर्थात वैष्णव या ब्राह्मण को प्रसाद दे, इसे अक्षय समृद्धि आएगी। अब किसकी इच्छा हो गई कि ये कार्य कल हम वृंदावन में करेंगे। इसको श्लोक को दूसरी तरफ से पढ़े, दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण अपने आप को समझता है ऐसे उचित स्थान पे उचित दिन पे कथा में आए और कूपन लेके प्रसाद खाए उसको भी अक्षदान प्राप्त होगा। भाई दोनों तरफ से इसको, भाई अगर खाने वाला भी तो चाहिए ना, खिलाने वाले तो बहुत आते हैं, खाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। नहीं भाई, खाने वाला स्वीकार करेगा तभी तो फल मिलेगा उसको, अब वैष्णव मिलेंगे कहां से। तो असल में यहां हमारे यहां ये ऐसे श्लोक का अर्थ होगा, नहीं वो सही अर्थ है असल में। भाई खिलाने वाले तो बहुत आ सकते, खाने वाला भी तो कोई सतपात्र मिले ना। इतना रोज 16 माला जपने वाला भाग्यशाली सतपात्र कहां मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है असल में ऐसा भागवत। और धाम में, और वो भी कृष्ण बलराम मंदिर में कैसे मिले, भाग्य से मिले। को खिलाने वाले को तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन खाने वाला भी उसको आशीर्वाद देगा। भाई प्रसाद खाते हो तो आशीर्वाद दिया करो, शुभकामना किया करो, ये भी हमारा धर्म है। श्लोक अच्छा नहीं है, दोनों तरफ से काम करेगा कि नहीं, दोनों तरफ से काम करेगा। भाई खाने वाला भी तो चाहिए ना। अब बहुत सारा यहां पान आन पकाओ, कोई साधु ही नहीं मिले तो क्या करोगे। साधु मिल जाना बहुत बड़ी बात है। अब दूसरे श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, सामान्य जनों, अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने संबंधियों तथा मित्रों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों के रूप में देखते हुए प्रसाद प्रदान करे। भगवान के भक्तों में के रूप में देखते हुए, पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों के रूप में, ये सब भगवान का, तो ये दृष्टि किसकी हो सकती है। सबको भगवान का भक्त कौन देखता है, सिर्फ उत्तम अधिकारी भक्त, जो बहुत उन्नत वैष्णव हो, जो अपने को बाद में खिलाता है सबको पहले खिलाता है। वैसे भी कहते हैं बांट के खाओ वैकुंठ में जाओ, बांट के खाओ वैकुंठ जाओ, जितना बांट के खाओगे उतना अच्छा है। ये भाव असल में देखा जाए श्री प्रभुपाद जी का हार्दिक इच्छा ये थी कि भाई भगवान के मंदिर के निकट में अगर कोई रह रहा है और मंदिर में आ रहा है तो मंदिर का मालिक तो भगवान कृष्ण बलराम है, राधेश्याम है, गौरनिता है, और मंदिर के रसोई घर की स्वामिनी श्रीमती राधिका है, और जिसकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं। तो जो मंदिर में आते हैं वो सब भगवान के अपने ही भक्त हैं, बच्चे हैं, जो अंदर आ ही गए हैं वो बच्चे, और उनको प्रेम से प्रसाद खिलाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का आउटस्टैंडिंग लेटर है, एक चिट्ठी है, पूरी दुनिया के इस्कान मंदिरों को लिखी हुई, और कलकत्ता से प्रभुपाद जी ने अपने जन्म स्थान से लिखी, और 1977 में लिखी, कुंभ मेले से वापस लौटते हुए लिखी। जिस कुंभ मेले में स्नान के दिन प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी बांटने की, क्योंकि रास्ते बंद थे, सामान नहीं मिला था, 2 घंटे प्रभुपाद ने कहा पहले क्यों नहीं व्यवस्था की, हमारा यहां तो प्रसाद वितरण करना ही मुख्य धर्म है, पुस्तक प्रसाद पापा ये सब के लिए हमारा काम ही ये है, पुस्तक और प्रसाद वितरण करना, और फिर प्रभु का हरि नाम, ये 3 ही काम हम करते हैं कुंभ मेले में, यही हमारा अमृत है, नाम अमृत, प्रसाद अमृत, पुस्तक अमृत। तो प्रसाद क्यों नहीं है, प्रभुपाद को इतना दिमाग के ऊपर इसका भी भार था। कलकत्ता पहुंचे, वहां से उनको भुवनेश्वर जाना था, तो चिट्ठी लिखाई के सब मंदिरों को कि हमारे सब मंदिरों में हर समय प्रसाद तैयार होना चाहिए, दाल चावल पूरी सब्जी पकोड़ा हलवा, नाम लिखे और कोई सभ्य व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो उसको आदर पूर्वक बैठ के प्रसाद खिलाओ। आपका प्रसाद अगर पूरा होने लगे तो दोबारा तैयार करो। मंदिर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने लिखाया, सब टेंपल प्रेसिडेंट के नाम में ये लेटर है, रसोई घर की मालिक राधा रानी है और लाखों लक्ष्मियां उसकी सेवा करती हैं, इसलिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं अपने मंदिर को तो यहां की शाम की आरती और खिचड़ी प्रसाद, ये 24 घंटे चलता रहता है। बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी प्रेम से खिचड़ी प्रसाद लेके पाते हैं और इन प्रसाद का कितना प्रभाव हुआ। एक बैंक में किसी मंदिर के भक्त को कुछ सहायता मैनेजर से चाहिए थी, जब मैनेजर के पास अपनी एप्लीकेशन ले गया तो वो इस्कान के वेशभूषा में गया। मैनेजर ने उसको देख के पूछा, इस्कान के हो? बोला हाँ। बोला कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जो चाहिए आपका सैंक्शन कर देते हैं। तो ये बेचारा हक्का बक्का रह गया कि ऐसे क्यों। बोला मैं जब पढ़ता था आपके मंदिर से रोज खिचड़ी प्रसाद खाता, मेरी जिंदगी प्रसाद से मैं बना हुआ हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या नाम है उसका, एप्पल का मालिक कौन, स्टीव, वो कहता है मैं इस्कान के प्रसाद खाने से इस बड़े स्तर के ऊपर पहुंचा हूं। तो ये प्रसाद अपना चमत्कार कैसे दिखाता है। ये लिखा है सभ्य व्यक्ति को प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रभुपाद से ज्यादा और कोई सभ्य व्यक्ति दुनिया में हो सकता है क्या, बिना किसी जान पहचान के सबको भगवान का भक्त जानकर अफ्रीका के कालों को भी प्रसाद बांट रहा है, रशिया के गोरों को भी बांट रहा है और गरीबों को भी बांट रहा है और धनियों को भी बांट रहा है, इससे ज्यादा और कौन सभ्य पुरुष हो सकता है। कितना बड़ा ये कार्य एक चल रहा है और इसमें कहीं रुकावट नहीं आ पा रही है। ये हृदय, इतना बड़ा हृदय होना चाहिए। प्रभुपाद ने तो यहां तक कहा, एक बार कुछ भजन गाने वाले बंबई के अच्छे घरों के माताजी लोग भजन गाया करती थी कृष्ण के प्रेम के, तो एक दिन सप्ताह में आके मंदिर में गाती थी। प्रभुपाद ऊपर अपने कमरे में सुनते और कहा, इनको कहा कि आप सब लोग यहां आके रहिए, रोज सुबह शाम भजन गाइए, आपको कुछ करना नहीं है, रहना खाना पीना सब हम देखेंगे। प्रभुपाद जी की इच्छा थी अगर कोई कीर्तन करे भक्ति करे तो पूरी दुनिया ही आके रहे, हम सबको खिलाएंगे सबको रहने की व्यवस्था भी करेंगे। ये प्रभुपाद का कितना बड़ा उदार दिल था, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती, ये ऐसा घर है जिसमें पूरी दुनिया रह सकती। हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि प्रभुपाद के जो भक्त है उसके लिए पूरी दुनिया ही घर है, वो कहीं भी जाते हैं उनको अपना घर मिल जाता है। हमने पूरी दुनिया में घूम के देखा है, जहां जाते हैं लोग अपना जैसे इस घर का सदस्य आया है इस तरीके से अपने घर में रखते हैं, खिलाते हैं, ले जाते हैं, पिलाते हैं। हमें ऐसे नहीं लगता है कि हम कहीं परदेश में गए। सब जगह भगवान राधा नित्य गौर नित्य है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ है, और कृष्ण बलराम है वही भोग लगता है, वही प्रसाद है, कहीं भी जाएं तो सब जगह एक घर ही लगता है। तो भगवान का घर बना दे, तो भगवान के भक्त हैं, इतना बड़ा उदार चित्त प्रभुपाद के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दिखता। लोग देते हैं, खिलाते हैं अपने नाम के लिए, लेकिन यहां नाम नहीं है, यहां सिर्फ सेवा है। तो आगे पढ़ते हैं, मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, सामान्य जनों, अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने संबंधियों तथा मित्रों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों के रूप में देखते हुए प्रसाद प्रदान करे। जैसे के पूर्व में कहा गया है, ये संस्तुति की जाती है कि प्रत्येक जीव को परमेश्वर का अंश मानते हुए प्रसाद बांटना चाहिए। प्रभुपाद जी का आज के श्लोक का तात्पर्य इस एक शब्द के ऊपर है कि सारे जीव भगवान का अंश है। जब आप किसी को प्रसाद देते हो तो ये आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हम भगवान के अंश को प्रसाद खिला रहे हैं। और ये हमारा धर्म है, इसको हम पूरा कर रहे हैं, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कुछ लेना नहीं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहां तक के गरीबों को भोजन देने के अवसर पर भी प्रसाद का वितरण किया जाए। ये प्रभुपाद जी, समाज में एक प्रचलित प्रथा है कि गरीबों को बचा खुचा, रात का बच गया जो घर में, वो जाओ बड़ी जो गरीबों को बांट के आओ, नहीं, प्रसाद बांटना चाहिए पहले। गरीबों को भोजन बांटने वालों को प्रसाद बांटना चाहिए। अब जो लोग ऐसे सिर्फ भोजन बांटते हैं वो प्रसाद नहीं है, क्यों, भगवान को अर्पण नहीं हुआ, तो उसमें आप उनको भगवान का अंश समझ के नहीं दे रहे हैं, उनको आप अपने आप को भगवान समझ के उसको खिला रहे हैं, या उससे महामूर्ख उनको भगवान समझ के खिला रहे हैं। ये इसके ऊपर प्रभुपाद जी लिखेंगे। तो पहले तो बांटना चाहिए प्रसाद। बहुत से लोग ऐसे हम जानते हैं कि लोग आप रास्ते हमारे यहां जाते हैं तो रास्ते में कोई ना कुछ कुछ मांगता ही रहता है, तो कुछ लोग प्रसाद अपने साथ घर से बना के रख देते हैं, कोई आता है उसको प्रसाद दे देते हैं। तो प्रसाद अपने साथ सदा रहना चाहिए, इससे ज्यादा शक्तिशाली देने के लिए कोई और चीज नहीं। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कलयुग में प्रत्येक वर्ष अन्न का अभाव रहता है और इस प्रकार परोपकारी जन गरीबों को खिलाने में प्रचुर मात्रा में खर्च करते हैं। अब प्रभुपाद जी धर्म जो 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 धार्मिक लोग हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कली काल में अन्न का अभाव होता है, गरीब लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो बहुत से लोग ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जो लोगों को भोजन देती है। ये तो ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये बड़ी मुख्य बात है, परोपकारी लोग हैं, इसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा शब्द ढूंढ निकाला है, इसका निषेध है। अब ये शब्द दरिद्र नारायण क्या है? दरिद्र का मतलब गरीब और नारायण का मतलब भगवान। इसका मतलब ये जो गरीब है ये बेचारा नारायण भगवान गरीब हो गया, और हम लक्ष्मीपति हैं इसको खिला रहे हैं। तो ये धारणा गलत हो गई ना, क्या भगवान कभी गरीब हो सकता है? क्या लक्ष्मीपति भगवान गरीब हो सकता है जिसको आपको खिलाना पड़ेगा? नहीं ना। तो ये शब्द कहां से आया? दरिद्र नारायण, ये गरीब नारायण का रूप है, ऐसे लोग कहते हैं। ये असल में भारत का जो वास्तविक सिद्धांतों को एक तो मायावादियों ने तोड़ मोड़ के, मैं ब्रह्म तू ब्रह्म सब ब्रह्म, ये तो पहले मायावादियों ने इसके अंदर नमक डाला। फिर ईसाई, जब क्रिश्चियनिटी यहां थी, उन्होंने समाज सेवा के कार्य करना शुरू किए, स्कूल खोलना और अनाथालय खोलना। तो हमने उनसे भी कुछ उस खिचड़ी के अंदर और सड़ी गड़ी सब्जियां उनके विचार डाल दी और कहा कि ये आप समझते ये गरीब है, हम समझते ये नारायण है, उनसे हम बड़ा होने की मूर्खता में ये नारायण शब्द हमने डाल दिया। तो ये असल में वास्तविक जो सिद्धांत है शास्त्र का, उसके ऊपर समय के कारण विधर्मियों का और हमारे अपने जो धर्म के रहस्य को नहीं समझने वाले हैं, उन्होंने तोड़ मोड़ के ये शब्द बनाया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये निषेध है, दरिद्र नारायण नहीं कहना चाहिए, भगवान गरीब नहीं है और तुम्हारी रोटी के लिए हाथ ऐसे पकड़ के मांगेगा नहीं। अरे वो तो संसार सबको देने वाला है, तो फिर क्या समझना चाहिए? ये नारायण के अंश हैं, फिर तो ठीक है, ये नारायण के अंश है, इसको खिलाना चाहिए। इसमें गलती क्या होती है कि ये अगर गरीब नारायण है तो हम इनको खिलाने वाले धनी नारायण है, तो ये इसका अर्थ ये है मायावाद कि ये भी नारायण मैं भी नारायण सब नारायण। यहां एक बहुत बड़ा अद्वैत मायावाद जिसको कहे, उसका बहुत बड़ा एक विद्वान, शिखर का विद्वान बनारस से आया और ठाकुर राधा कृष्ण का दर्शन करके जा रहा था। एक सामान्य व्यक्ति ने उससे पूछा, महाराज आप शास्त्र अर्थ करते हैं? बोला हाँ करता हूं। बोला आप किसी को हराते हैं तो आपको खुशी होती है? बोला बहुत खुश होता हूं। बोला जिसको हराते हैं वो कौन होता है? बोला वो भी नारायण। बोला जो आप हराते हो आप क्या है? बोला मैं भी नारायण। बोला एक नारायण दूसरे को हरा के नारायण को हराता है वो खुश होता है, ये आपका सिद्धांत है? उस महात्मा का दिमाग हिल गया, ऐसे कैसे? मैं भगवान और दूसरा भी भगवान है, उसको मैं हराता हूं और मैं खुश होता हूं, ये मैं कौन सा भगवान हुआ? उसका दिमाग हिल गया। उसने वैष्णव सिद्धांत को पढ़ने के बाद ये कहा, बड़ा विद्वान था, कहा कृष्ण परम तत्व अहम न जाने, कृष्ण से ऊपर कोई तत्व है मैं नहीं जानता। उसका मन बदल गया। एक काशी में पंडित थे, वेदांत का ही पाठ करते थे, किसी ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण रोज भागवत पढ़ता था, घर में सूतक आ गया, बच्चे का जन्म हो गया और वो नक्षत्र से था, 28 दिन शास्त्र नहीं पढ़ना, उसके मन में ये आया। वो बड़े पंडित को कहा, महाराज आप हमारी तरफ से एक अध्याय रोज पाठ कर लीजिए। पर मैं भाई भागवत भागवत नहीं पढ़ता हूं, मैं तो वेदांत पढ़ता हूं। पर महाराज कृपा करना, एक महीना हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है रख जाओ। दसम स्कंद शायद चल रहा था, महाराज ने पढ़ना शुरू किया, 28 दिन पढ़ा नक्षत्र के, सारे पुस्तक उपनिषद वेद सब बांट कर वहां से, और वृंदावन में आया और गौरिया वैष्णव दीक्षा लेके पूरे ब्रज के 84 केश कोश में डंडा घुमा के कहता था कि कौन कहता है कि अद्वैत सिद्धांत में ये लिखा है, मेरे से बात करके देखो। या पूरे ब्रज में आके उसने प्रचार किया। तो बहुत से ऐसे गलत रास्ते में चले गए वातावरण से, जब सही सिद्धांत का पता लगता है तो वास्तव में भगवान के अंश समझ के भंडारा चलाओ, अक्षय पुण्य होगा। भगवान समझ के खिलाओगे तो भगवान कहेगा मेरे कोई गरीब बना दिया तो इसको क्या दूं, अब जब मैं ही गरीब हूं तो इसको कहां से दूंगा, मैं इसी की रोटी पे पल रहा हूं, तो कहां भगवान देगा, फिर अक्षय पुण्य नहीं मिलेगा। तो भगवान का अंश प्रभुपाद जी लिखते हैं, निषेध करते हैं, प्रत्येक को चाहिए कि प्रचुर मात्रा में प्रसाद का वितरण प्रत्येक को परमेश्वर का अंश मानते हुए करे, न के शब्द जाल द्वारा गरीब मनुष्य को नारायण बनाते। ये असल में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे, उन लोगों की प्रशंसा भी कर रहे, अच्छा काम करते, परंतु धारणा गलत है, मानसिकता गलत है। मैं खिलाने वाला हूं आप खाने वाले हो ये विचार करना तो असुरी भाव हो गया, ईश्वर हो अहम अहम सिद्धो अहम बलवान अहम सुखी, ये तो ईश्वर भाव हो गया, ये असुरी भाव हो गया, इससे फल नहीं मिलेगा। इससे संसार में सुख मिल सकता है, भगवान नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा सेठ था, जो आता था उसको देता था, चारों दरवाजे खुले थे, और देता था सर नीचे करके ऐसे देता था। किसी ने पूछा, महाराज आप सेठ साहब बहुत बड़ा उदारता से दान करते हो, सर नीचे क्यों करते हो? बोला मुझे शर्म आती है, लोग कहते हैं मैं देता हूं जबकि मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं सर नीचे करता हूं कि ऊपर वाले का, मैं तो यहां मोदी बन के दो लोगों को बांट रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। एक बार शहनशाह अकबर शिकार करते हुए कहीं भटक गया, भूखा था प्यासा था, एक किसान ने उसको सूखा हुआ एक रोटी, ज्वार की रोटी खिलाई दी और मटके का ठंडा पानी पिला दिया, बस भूख में तो वो भी अच्छा लग गया उसको। कहा मैं शहनशाह हूं हिंद का, हिंदुस्तान का, कभी कोई समस्या हो तो मेरे पास आना। अकाल हुआ, ये बेचारे को याद आ गया, चला आया दिल्ली में। शहनशाह हाथी के ऊपर चढ़ के जा रहा था सवारी, इसने पीछे से कहा महाराज महाराज, लोगों ने हटाया, अकबर ने देखा पहचाना कि ये तो वही है जिसने मेरे को मुसीबत में रोटी दी थी, कहा कि इसको महल में ले आना। रात को मेहमान खाने में रखा गया बेचारे गरीब को, ये तो 4 बजे उठने वाला था, सवेल उठ के अपने सुमरण किया, भगवान की प्रार्थना की, तो इसने देखा कि वो शहनशाह भी सुबह सुबह उठा है और ऐसे हाथ ऊपर कर रहे, ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, नमाज पढ़ रहा था। ये थोड़ी देर के बाद महाराज ने बुलाया, ये उसके पास आया। महाराज ने कहा क्या चाहिए? बोला पहले मुझे ये बताइए कि सुबह आप ये क्या कर रहे थे? बोला मैं भगवान से अल्लाह से दुआ मांग रहा था, प्रार्थना करके भगवान से मैं मांग रहा था। बोला बस महाराज मैं जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। बोला मैं जानता हूं आपके वहां अकाल हुआ है, तुम सहायता के लिए आए हो। बोला महाराज ये तो सही है, बोला फिर सहायता नहीं लोगे? बोला आप ही भगवान से मांग रहे हो, फिर मैं आपसे मांग के क्या करूं, उसी से जाके मांग लेता हूं। भाई तुम ही तो भिखारी हो मेरी तरह, मेरे से भी बड़ा, सुबह उठ के मांग रहे हो, रोज मांग रहे हो, तुमसे क्यों मांगू, भगवान से मांग लूंगा। तो ये देने वाला एक भगवान है, देने वाला एक भगवान है, हम सब उसके माध्यम से दे रहे हैं। जो समझदार है, भगवान के सब अंश है, सबको देना चाहिए, बांट के खाना चाहिए, वो महात्मा है। एक गरीब के बच्चे का ऑपरेशन होना था, पैसा नहीं था, मंदिर में प्रार्थना कर रहा था रात को 3-4 बजे, सुबह ऑपरेशन बच्चे का होगा, भगवान मेरे पास एक पैसा नहीं, कैसे अच्छा होगा, क्या होगा। एक बहुत बड़े धनी सेठ को नींद खराब हो गई, गाड़ी लेके घर से ऐसे घूमने निकला, उस मंदिर का दरवाजा खुला देखा, अंदर चला गया, आदमी को रोते हुए देखा, बोला क्या है, बोला प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से, बच्चे का कल बहुत बड़ा ऑपरेशन होना, मेरे पास पैसा नहीं। सेठ ने चेक लिख के साइन करके दिया, बोला जितना भी बिल आए उतना इसके ऊपर लिख देना, तुम्हारे चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर सेठ ने कहा ये मेरा कार्ड ले लो, और जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। उसने बोला कार्ड की जरूरत नहीं। बोला क्यों? बोला आधी रात को जो आपको घर से उठा के मेरे पास सेवा के लिए भेज सकता है, उस एक का कार्ड मेरे पास बहुत है, और किसी के कार्ड की जरूरत नहीं। भाई और किसी के कार्ड की क्या करा जरूरत है? अब आपको रात को 2 बजे घर से भेज सकता है देने के लिए, तो फिर तुम्हारे कार्ड को छोड़ो, वो एक कार्ड ज्यादा है। एक बेचारा गरीब था, भगवान के मंदिर में कह रहा था रोटी भगवान हमारे घर में 2 टाइम की नहीं है। तो एक नास्तिक खड़ा था, कम्युनिस्ट, उसने कहा भगवान इसको रोटी कहां से देगा। उसने क्या किया, बाजार से कुछ वो ब्रेड खरीदा, कुछ सामान खरीदा, उसके घर में जाके कहा ये लो तुम्हारी रोटी लाया हूं। उसने ले लिया, बोला पूछोगे नहीं किसने भेजा है। उसने उसकी ओर देखा और कहा पूछ के क्या करूं, अगर मेरा भगवान चाहे तो किसी नास्तिक के हाथों भी भिजवा सकता है। तुम जैसे मूर्खों के हाथ से भी भगवान भिजवा सकते, तो खिलाने वाले भगवान के प्रतिनिधि, उसको मैं खिलाने वाला हूं यह नहीं सोचना चाहिए। मेरी सेवा स्वीकार हो रही है, भगवान कर रहा है। एक भाषा है, ये मेंढक, मेंढक है ना छोटा, इसको एक भाषा में डेडर कहते हैं। तो एक बहुत एक हिंदू महात्मा था, उसने किसी ने भेजा जाके सामने एक बहुत बड़ा पीर मुसलमान रह रहा है, उससे पूछ के आओ कि दुनिया से तर के कौन जाएगा, कौन दुनिया में तरेगा। तो उस महात्मा ने कह दिया हिंदू ने कि एक डेडर मतलब मेंढक और दूसरा गधे, गधे ये तरेंगे। उसने बोला ये कोई महात्मा है? उसने कहा ये सही कहा है, दे और डर, इसका मतलब तुम दो और फिर डरो कि भगवान इसको कबूल तो करे। तुमने दिया, सामने वाले ने कबूल ही नहीं किया, ऊपर वाले ने कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ? देने के बाद भी डरो कि कोई इसको स्वीकार करे। और जिसका दिल भगवान से जुड़ा हुआ है, गड गड का मतलब मिला हुआ, हिया का मतलब दिल, जिसका दिल भगवान से मिला हुआ है वही दुनिया से तरेगा। और जो सबको भगवान का अंश जानता है और प्रसाद खिलाता है, वही संसार में काम अक्षय काम दुख उसको प्राप्त होगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित है, हर जीव भगवान से संबंधित है, किंतु उसे भूल से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित होने से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण बन गया है। भगवान से संबंधित है, सिद्धांत ये है कि सबके अंदर भगवान है, पर सब भगवान नहीं है। हम सब भगवान के हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। सब में भगवान है ये बात तो मानते हैं, लेकिन सब भगवान है ये गलत है। और ये इतनी हमारी भाषा में आ गया है, ऐसे गलत प्रचार का इतना प्रभाव हो गया है कि लोग आत्मा सो परमात्मा ये तो कहने शुरू कर दिए। ये सब भाई भगवान, सब भगवान है, ऐसे बहुत प्रभुपाद बहुत कटाक्ष करते थे, बहुत कटाक्ष में बोलते थे, तुम भगवान मैं भगवान सब भगवान। प्रभुपाद कहते किसी पतिव्रता स्त्री से पूछो कि तुम्हारा पति कौन है, और वो कहते थे ये सब पति है मेरे, तो ये कोई अच्छी बात है, कोई अकल की बात है, सब पति है मेरे, वैश्या है तो स्त्री है। तो ये जो कहते हैं सब भगवान है, ये कोई बुद्धिमानी का उत्तर है क्या? एक भगवान है, हम सब उसके सेवक हैं, और सभी भगवान के पुत्र हैं। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, तो सब भगवान के संतान है, कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, कोई बात नहीं, लेकिन सबको प्रसाद दो, पहले तो भोजन नहीं दो, प्रसाद दो, भगवान को भोग लगा के फिर खिलाओ, और खिलाओ भी साधु मुनि अन्नम खिलाओ, मुनि अन्नम खिलाओ, शुद्ध प्रसाद खिलाओ, तब अक्षय काम दुख प्राप्त होगा। ऐसे मायावादी दर्शन अत्यंत खतरनाक है। इतना बड़ा पुण्य करने के बाद भी कोई सदगति न मिले तो फायदा क्या? बहुत बड़ा खतरनाक है। विशेष रूप से भक्त हेतु, भक्त से भक्त हेतु, भक्त के लिए तो बहुत बड़ा हानिकार है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें मायावादी दर्शनों के संगति करने हेतु मना किया है। मायावादी भाष्य सुनी ले है सर्वनाश। यदि कोई मायावादी दर्शन से संबंधित जोड़ता है, संबंध जोड़ता है, तो उनकी भक्तिमय जीवन का विनाश अवश्य संभवी है। इसका मतलब उसका विनाश जरूर हो जाएगा। तो ये दो श्लोकों में मुख्य बात क्या की गई कि जिसको भगवान ने कुछ धन दिया है तो अच्छे देश और पात्र को, काल पे सत पात्र को भगवान का प्रसाद वितरण करना चाहिए, पहला श्लोक। तो फिर उसको अक्षय समृद्धि की प्राप्ति होगी। दूसरे श्लोक में कहा गया है वो प्रसाद फिर सबको, देवता ऋषि पितर से लेकर संबंधी मित्र और अपने सगे रिश्तेदारों को भगवान का अंश समझकर बांटना चाहिए। तो इसमें एक बात सिर्फ मुख्य है कि हम बांटने वाले अपने आप को सेवक समझें, और जिनको बांटते हैं उनको भगवान का, भगवान से उनका संबंध है, वो भगवान के भक्त हैं, ऐसे समझ, तो हमारी इस सेवा का शुभ लाभ होगा, तो ये लाभदायक सेवा होगी। अब इसका बहुत सरल और सरल, बिल्कुल सरल किया जाए तो हम तो नहीं जानते हैं कि कौन सत्पात्र है, कौन सत्पात्र नहीं है, कहां भोग लगाएं कहां नहीं लगाएं। इसलिए जहां जैसे जैसी सेवा हो रही हो, जहां प्रसाद वितरण की सेवा हो रही हो, भोजन वितरण की नहीं, भोजन वितरण की नहीं, प्रसाद वितरण की जहां सेवा हो रही हो, वहां अन्न दे दे, सामग्री लाके दे दे, धन दे दे, और ये न सोचे कि इसके बाद ये क्या करेंगे, ये करेंगे इनका धर्म है, हमने अपनी तरफ से भगवान को अर्पण कर दिया और आंखें बंद करके भजन करने बैठ जाए, ये सबसे आसान है। और ये संस्थाएं इसलिए बनी हुई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ ने प्रसाद वितरण किया, कोरोना काल में लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों के घरों तक पहुंचाया, कोई लोग गरीब नहीं थे लेकिन उस वक्त आपत काल में थे कि बन नहीं पा रहा था, गरीब तो अलग थे, गरीबों को तो दिया और बात है, बड़े धनियों के घर में भी पहुंचाने की आवश्यकता पड़ जाती है कि वहां कोई बनाने वाला नहीं है, सारे बीमार है, तो ये कार्य जो किया प्रसाद उनके घर में पहुंचाया, गरीब है या शाहूकार है इससे हमें कुछ लेना नहीं, कोई भी है उसको प्रसाद देना है। तो जो ऐसा कार्य कर रही है संस्था उसमें उदारता से सहयोग करना चाहिए, ये इस श्लोक का सही तात्पर्य है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद अच्छे से और समझाने के लिए। मेरा ये मतलब था कि प्रभुपाद जी ने इसमें मायावाद दर्शन पे इतने कठोरता से बोला और हमेशा ही बोलते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है व्यक्ति के साथ, मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि
मनोवृत्ति बदल जाती है कि मैं भगवान हूँ? ये जो मनोवृत्ति बदल जाती है, एटीट्यूड बदल जाता है, सर्विस का एटीट्यूड खत्म हो जाएगा और भोक्ता का एटीट्यूड हो जाएगा, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भोक्ता हूं, और यही सारा समस्या है, एटीट्यूड का बदल, जो मनोवृत्ति बदल जाएगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।